1592 में
जिस कला है कि पाप की दुनिया से दूर कहीं ले जाए। अभी तुम बच्चे सामने बैठे, बाप कहते हैं हो जीव की आत्माएं सुनती हो, किसको सुनती हो? जो सामने बैठे आत्माओं को बात करते हैं, कानों से सुनती हो? और सुनाता कौन है? जो सामने बाप बैठे हैं वो सुनाते हैं, बात करते हैं आत्माओं से। आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुष्का नाम में। गीत में भी कहते हैं तो पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चले, पतित दुनिया की तो और पावन दुनिया की तो कहा जाता है। ये दुनिया नहीं जानती क्योंकि बंदर निकल है। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना सीखा है, क्रोध के बसी भीत होकर कहते हैं हम इनके देश को नाश कर दें। वह कहते हैं हम इनके देश को नाश कर रहे हैं, तो कितना क्रोध हुआ। एक दूसरे दुख देते हैं ना, कहते भी नहीं ये भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर संदेह में ले गए। क्योंकि पुरानी दुनिया में कलयुग को पुराना युग, सत्युग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगर नया युग कोई बना नहीं सकता। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम ले चलते। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी सन्यासी आज स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। चले सन्यासी आदि नहीं ले जा सकते, अपने को ब्राह्मण चराने वाले तथा कथित तो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी को ले जा सकते हैं। उनमें भी सन्यासी है, अगर उनमें भी सन्यासी न हो तो सब देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बने रहे 84 जन्मों तक, फिर दूसरे धर्मों का फाउंडेशन पड़ ही नहीं सकता। दूसरे धर्मों का फाउंडेशन जिनके द्वारा पड़ता है वो आत्मा दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो ही 84 जन्म में फिर संगम युग में आकर के ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण बनकर के जो जो जिस धर्म में कन्वर्ट हुआ उस धर्म के लक्षण दिखाते गए तो उन्होंने भी सन्यासी हुए। तो कोई भी सन्यासी आदि स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। लेकिन अभी मान्यता क्या है कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के ध्यान सुना के चला गया और अब हम ब्राह्मण स्वर की स्थापना करेंगे। बाबा कहते बाप बिगड़ कोई नया युग बना ही नहीं सकता। तो बाबा कितनी अच्छी रीत समझाते हैं फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। क्या नहीं बैठता है कि बाप बिगड़ नई दुनिया कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते। मनुष्यों की श्रेष्ठ मत नहीं मिलती, मिलती किसकी है? बाबा की। तो श्रेष्ठ मत से ही हम क्या बनते हैं? श्रेष्ठ देवता बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में उनके पद पाएंगे, और यही श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो फिर ऊंच पद नहीं पाएंगे। ये तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मन मत कहा जाता है। मन तो हर एक आत्मा में, लेकिन मनमत किसे कहा जाता है जो अपनी मत चलाए, अपनी मत पर चले, किसी की न माने। अपनी मत पर कौन चलते हैं? जो अपने को भगवान समझे बैठे हैं वो किसी की बात सुनते नहीं। बात कहते हैं श्रीमत पर चलो, मनमत पर न चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आखिरी मत नाक में ढकेलती है। क्या 63 जन्मों की प्रैक्टिस हो चुके हो, अभ्यास पड़ चुका है। कौन सा? कि घड़ी घड़ी आखिरी मत लेते हो और उस पर चलकर नीचे नरक में जाते। क्रोध करना आखिरी मत है। बाबा कहते हैं एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। ऐसे नहीं कहते हैं धंधा नहीं करो, धंधा बंद करो, परंतु हर एक को अपनी राय बाबा से लेनी है। बाप देखेंगे तो कहेंगे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, धंधा तो करना है। लेकिन धंधे में भी पाप से भी काम चलाते हैं तो पुण्य से भी काम चलाते हैं। बाप कहेंगे पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम करो। क्या करो? खर्चा नहीं चलता है इस पाप की दुनिया में, बिना बेईमानी किए। तो क्या करो? अपना खर्चा कम कर दो, बाकी चलो पुण्य से, पुण्य का खाता कमाओ। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्मकांड पर कितना खर्चा करते हैं? कौन? दुनिया में तो प्रत्येक जन्म करते ही आए हम बच्चे, लेकिन अब तो हमारी इतने बड़े संसार के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। कौन सा छोटा सा संसार? ब्राह्मणों की दुनिया का ब्राह्मण परिवार। 500 करोड़ की बड़ी दुनिया देखना हो तो ब्राह्मण परिवार में हर तरह के टेम्पल देख लो। उस छोटी से संसार में सब कुछ देखने में आता है। तो उसके लिए भी बताया कि तीर्थों पर धक्का खाना। तीर्थों में क्या होता है? चैतन्य मूर्तियां होती है या जड़ मूर्ति होती है? जड़ मूर्ति होती है। तो जड़ मूर्तियों पर तीर्थों पर धक्के खाने जाते हैं। ब्राह्मण की दुनिया में भी कहां जाते हैं? अरे जड़ मूर्ति पत्थर की नहीं तो ट्रांसलाइट की कही है, तो है तो जड़ मूर्ति ना। धक्का खाने जाते हैं तो वहां श्रीमत से समझ नहीं मिल सकती। जड़ मूर्तियों से श्रेष्ठ मत कैसे मिलेगी? बाकी मनुष्य तो सब बहते हैं। इस पाप की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा हो नहीं सकता और पुण्यात्मा की दुनिया में एक भी पापात्मा हो नहीं सकता। तो तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, तो इन पर कितना खर्चा करते हैं? ये सब छुड़ाए देते। कौन छुड़ाए देते? बाबा इन सब बातों से छुड़ाए देते। तो छोड़ना है या अभी भी धक्का खाना है? शादी में मनुष्य कितना स्वाद माना करते, कर्जा लेकर भी शादी कराते। सेरेमनी उत्सव, तो जो उत्सव करेंगे उसमें खर्चे के लिए पैसा चाहिए। पैसा पास में नहीं होगा तो क्या करेंगे? कर्जा लेकर के भी शादी माना करें। शादी कराते एक तो कर्जा उठाते, अब दूसरा के पति से बनते तो भी जो पति से बनने चाहते हैं जाकर के बने, जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। उन्होंने तो कोष घर खोले हुए शादियां कराने के लिए, तो जो पति से बनना चाहते हैं उनको पति से बना, बाकी जो पवित्र रहना चाहते हैं कोष घर में कुछना नहीं चाहते, हाँ पति घर क्यों रोकते मित्र संबंधी आगे झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा, इस बात में झगड़ा करेंगे ये शादी करो, वो कहेंगे शादी करो, और जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे वो कहेंगे हमें ये साधु साध माना नहीं करना, तो सहन तो करना पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना, देव का बाप आया हुआ है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराती हूँ, आया हुआ इसलिए उसके आने का अहम आवश्यक क्या, भगवान भगवती पद प्राप्त कराने के लिए तो आया हुआ है या गया हुआ है, आया हुआ तो अहम आवश्यक पूरी करके जाएगा या सन्यासी निकल बना के चला जाएगा, लेकिन ब्राह्मण समझते क्या है, आया और गया। अब इस दुनिया को स्वर्ग हम बनाएंगे, तो स्वर्ग में तो भगवान भगवती चाहिए ना, भगवान आएगा तो अपना कार्य पूरा जरूर करेगा, जरूर भगवान और भगवती बना करके जाएगा, लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है, तो भगवान आया उसके तन में ब्रह्मा तन में, तो भगवान के आने का अहम आध्यात्म भी तो पूरा होना चाहिए ना, किसी से आया ब्रह्मा के तन में ही आया होगा, वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं सात साल की एज, ब्रह्मा की एज 100 साल, शास्त्र में भी तो 60 साल में आए और 40 साल ऐड किए तो 100 ईयर्स पूरे हुए, तब 76, तो 76 में जब ब्रह्मा की एज पूरी हुई तो भगवान भगवती प्रत्यक्ष होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, इस पाप की दुनिया में भगवान भगवती प्रत्यक्ष होंगे, बाबा ने बोला तो पाप की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हुए, लेकिन सूर्य पर बैंक जैसे दिखाई जाती है, हथेली पर स्वर्ग, माना बुद्ध की हथेली में वो भगवान भगवती वाली बनने वाली आत्मा है। कोई कोई ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाए तो भगवान बाप आया हुआ है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं, लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाते हैं। कलयुगंत में तो सभी पतित हैं। फिर उन्होंने को कितने चंद किया, किन्हों को भगवान भगवती बनने वालों को, क्योंकि कलयुग में सब पतित और सतयुग में सब पावन। तो परिवर्तन करने वाला कौन है? बिंदी शिव बाबा ब्रह्मा के तन से दगलेखराज के तन से परिवर्तन करने वाला, मानो भगवान भगवती बनाने वाला नहीं। शिव बाबा जिसे बाबा कहते हैं, जो सारी शक्ति को चेंज करने वाला है, नरक से स्वर्ग बनाने वाला है, केवल बुद्धि में परिवर्तन नहीं कराता। बुद्धि में किसी को पता चल जाए कि ये बनने वाले हैं, उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में भी देखने में तो हर काम पहले शिक्षण में होता है कंपन, फिर स्कूल में कंपन होता है। पहले नक्शा बुद्धि में आएगा, तीरी पर बहिष्ट आनी चाहिए, कृष्ण की तीरी पर बहिष्ट दिखाते हैं हथेली पर स्वर्ग, फिर बाद में इंग्लिश में बनता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर के स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते। स्वर्ग को राम राज्य क्यों कहा? स्वर्ग सती में होता है तो कृष्ण का राज्य, नारायण का राज्य, नारायण राज्य और कृष्ण राज्य ब्रह्मा द्वारा स्थापन होता है तो ब्रह्मा राज्य, शिव बाबा स्थापन करते हैं तो शिव राज्य क्यों नहीं गया जाता? क्योंकि राम के द्वारा ही राम राज्य की स्थापना होती है। राम नहीं तो राम राज्य भी स्थापन नहीं हो सकता। तो अब राम होना चाहिए ना, तो राम राज्य भी होगा है? राम राज्य भी तो होगा फिर, लेकिन राम है दो, एक निराकार राम और एक साकार राम। निराकार राम कौन है? ज्योतिबिंदु। उस ज्योतिबिंदु का नाम तो मुरली में बताया, मेरा नाम तो शिव ही है, वो तो कभी बदलता नहीं, तो आपने क्यों बदल दिया? ज्योतिबिंदु मेरा नाम तो कभी बदलता ही नहीं। बिंदु जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, ऐसे मुरली में बोले। तो बिंदु तो सिर्फ शिव नाम से पुकारा जाता जा सकता है, असली नाम तो उसका शिव है। फिर जब किसी शरीर में प्रवेश करके निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है तो निराकार राम, क्या निराकार राम। तो निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? वो तो शांति धाम का हो जाएगा। निराकारी वर्षा माना शांति धाम की निसंकल्पी स्टेज बन सकती है, बाकी आपको पहुंचना कहाँ है? सुख धाम। जीवन में रहते सुख चाहिए,
क्योंकि मन की शांति तो जब चाहो आत्म की स्थिति में स्थित तो हो जाओ और शांत हो जाओ, वो तो यहां भी हम शांति धाम अपने लिए स्थापन कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आत्मिक स्थिति की। लेकिन सिर्फ इतने से ही शांत थोड़ा ही हो जाना, हमको तो चाहिए सुख धाम, शरीर में रहते हुए सुख चाहिए, उसमें शांति तो समाई हुई होगी, तो वो कैसे मिलेगी? सिर्फ निराकार राम से नहीं, फिर साकार राम, ये क्या बात, दोनों एक में ही है? नहीं, राम को कहते हैं, राम को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया जाता है जो टाइटल और किसी को नहीं मिल सकता। कोई मनुष्य मात्र को वो टाइटल उतना नहीं देते जितना राम के लिए कहते। क्या कहेंगे है राम के लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम माना क्या होता है? मर्यादाओं पर चलने में, मर्यादाओं में चलने वाले पुरुषों में उत्तम। मर्यादाएं स्थापन, मर्यादाएं बताने वाला कौन, और मर्यादाओं पर चलने वाला कौन? जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है वो मर्यादा बताने वाला है, वो है निराकार राम। और चलने वाला कौन, वो कौन है? साकार में है, कहाँ है? प्रजापिता। वो तो निराकारी स्टेज में स्थिर होने वाली आत्मा परमात्मा के ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं तो निराकारी स्टेज बनती है साकार शरीर से। हाँ, जो त्रेता में राम और सीता दो होते हैं ना, दो का राज्य होता है त्रेता के आदि में, तो यहाँ संगम में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो ही त्रेता में जाकर के क्या बनेंगे? राम सीता। लेकिन मेल फीमेल चेंज हो जाएंगे, यहाँ का जो मेल होगा वो वहां फीमेल सीता बन जाएगा, और जो यहाँ की फीमेल होगी लक्ष्मी वो त्रेता के पहले जन्म में जाकर के राम बन जाएगी। तो इस समय वर्तमान समय में मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली आत्मा कौन सी होगी? कहते हैं निराकार राम। निराकार राम का टाइटल, जो शिव बाबा का टाइटल वो निराकार राम का टाइटल, शिव बाबा का टाइटल अलग और साकार देवताओं के टाइटल अलग। साकार देवताओं की जो टाइटल है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये शिव बाबा को टाइटल नहीं दे सकते, ये टाइटल राम बाप के नहीं है। वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन क्या है? एक की मर्यादा में बंद करके रहना, मेरा तो एक दूसरा न कोई, संसर्ग संपर्क इंद्रियों से शरीर से मनसा से वाचा से किसके साथ? एक के साथ। और शिव बाबा आता है तो शिव बाबा जब प्रैक्टिकल में संसार में आता है तो एक के साथ उसका संबंध या अनेकों के साथ है? शिव बाबा का। तो निराकार राम अगर एक के साथ संबंध जोड़ करके बैठ जाए तब तो किसी की सती गति सदगति होनी नहीं, फिर तो एक ही होगी। तो वास्तव में निराकार राम का जो पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है वो कोई उसका टाइटल नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, न वो संगमयुग में प्रैक्टिकल में इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है, वो तो निराला है। मर्यादा किसके लिए है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं उनके लिए मर्यादा है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है उनके लिए मर्यादा नहीं। कौन सा जन्म मरण का चक्र? निश्चय होना और अनिश्चय होना। अभी अभी निश्चय होना, अभी अभी अनिश्चय हो जाना। तो ये जिनको होता है वो सब उस चक्र में आने वाले हुए। किस चक्र में? जन्म मरण के चक्र में आने वाले। तो उन आत्माओं के लिए मर्यादा है, बाकी बाप का जो पार्ट है वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, स्वदेशी बन जाए, स्वदेशी एक पत्नी व्रतधारी होते, स्वदेशी स्त्रियां भी अपने जीवन में एक पति करती हैं, ये मर्यादा होती है उनकी, भारतवासियों की। तो अगर बाप भी ऐसा पार्ट बजाने लगे, स्वदेशी बन जाए, तो विदेशियों का उद्धार नहीं हो सकता। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं आत्माएं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो बाप तो अव्यक्तवाणी में क्या बोला, बाप इस समय बच्चों से मिलने के लिए विदेशी बनकर के आए। ऐसे नहीं, विदेशी धर्म की स्थापना करनी है, नहीं, स्थापना तो स्वदेशी धर्म की करनी है, लेकिन बाप विदेशी बनकर के क्यों आए? क्योंकि जिसको सुधारना होता है तो उसके जैसा रूप भी धारण करना पड़े। तो बेहद का बाप आया है, राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त करा ले। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर के स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते? इस राज्य की, राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य की स्थापना ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा होगी या मर्यादा हीन के द्वारा होगी? जिसकी मर्यादा पक्की हो, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा नहीं कोई, ये मर्यादा देखने में आए, परखने में आए, अपने को भी अनुभव हो तो दूसरों को भी अनुभव हो उस आत्मा के द्वारा। तो वही आत्मा राम त्रेता में जाकर के बनती है। माना जो संगम युग में लक्ष्मी का पार्ट, वही नौ जन्म के बाद जो दसवां जन्म त्रेता में होगा, पहला जन्म वहां जाकर के राम बनेगी। वो राम वाली आत्मा वर्तमान समय में मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट 100% जरूर बजाय रही हो, जिसके लिए गायन बताया भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो तुम बच्चे जान गए स्वर्ग अथवा रामराज की स्थापना कैसे कराते? हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहां आए हैं। कहां आए हैं? बाप के पास। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, आए तो हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उसे पद पाएंगे, सपूत बच्चे होंगे वो। बाप सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम इनके वारिस बन करके दिखाओ, इनके माता पिता के मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य में तख्त नशीन होकर के दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे ऊंची जाओ, क्या हम उतना ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकते जितना तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से भी ऊंच चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं थोड़ा ही बनता हूं। मेरा चित्र और चरित्र कैसा दिखाते हैं, हकीरी वेश। तो तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, कितना मीठा बाप है। आपकी श्रीमत मशहूर है, बाबा हम आपकी हिम्मत पर चलेंगे। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर चौरा लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रंग है।
कोई 592 का प्रातः क्लास पहले पेज की अंतिम 3-4 पंक्तियां। तो बात चल रही थी माया हार माया से जीते जीत, मन अक्षर कहना रंग है। मन को जीतने की बात नहीं है, जीतना किसको है, माया को जीतना है। ऐसे नहीं कि मन रूपी ब्रह्मा को जीतना है। जैसे आत्मा की 3 कार्य करता कौन कौन, मन बुद्धि संस्कार, तो ऐसे ही परमात्मा के भी 3 कार्य करता कौन, ब्रह्मा रूपी मन, बुद्ध रूपी 3 नेत्र संकर और परिवर्तन शक्ति संस्कार विष्णु, उसके बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या चीज से ही परिवर्तन होता है, सही परिवर्तन क्या चीज से ही होता है, इम्प्योरिटी से विनाश तो होता है लेकिन असली परिवर्तन प्योरिटी से होता है। तो मन अक्षर कहना रंग है कि मन रूपी ब्रह्मा को जीत लिया तो जीत गए, नहीं, मन कोई अमन नहीं हो सकता। हाँ अच्छे संकल्प कहला सकता है, मन होगा तो बुरे संकल्प नहीं चलाएगा तो अच्छे संकल्प चलाएगा, ये परिवर्तन तो हो सकता है। बाकी मन बिल्कुल चले ही नहीं और हो भी, ऐसा नहीं होगा। मन परम धाम में मन होगा क्या, परम धाम में मन नहीं होगा। बाहर तो बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा बैठा हुआ, मन नहीं होता। मन वहां चलाए मानो हो तो मन, अब अच्छे रास्ते पर चले या बुरे रास्ते पर चले, चलेगा तो जरूर, तो मन तो संकल्प करेगा।
हम चाहें संकल्प रहे तो हो जाए। दूसरा पेज, संकल्प रहित होकर के बैठ जाए परंतु कब तक बैठेंगे, मन को अमन कब तक बनाएंगे, कर्म तो करना है ना। वो समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना है। कौन समझते हैं है? हाँ, कि गृहस्थ धर्म में रहना यह कर्म हमको नहीं करना। कौन सा कर्म? गृहस्थ धर्म में रहना। गृह मन है घर, और इच्छ मन स्थिर होकर के रहना। घर में बैठना ये हमको नहीं करना, तो कहाँ चले जाते हैं? घर से दूर जंगल में चले। घर किसको कहा जाता है? चार दीवारी को घर कहा जाता है। ईंटों का मकान बना लिया है उसको घर कहा जाता है। उसमें साधु संन्यासी भी रहते हैं? नहीं, घर जो है पुरुष का स्त्री ही घर कही जाती है। वही घर को बनाने वाली या बिगाड़ने वाली होती है। चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए और चाहे तो घर को नरक बनाए दे। तो सन्यासी समझते हैं गृहस्थ में रहना यह कर्म हमको नहीं करना, मान घर में हमको नहीं बैठना। वो सन्यासी कहते हैं, वो मैं नहीं कहता हूं। मैं मन सो बाबा नहीं कहते कि घर में नहीं बैठना। बाबा तो कहते हैं भल घर गृहस्थ में रहो, पवित्र रहो। मन मन बुद्धि ये तो बात में लगी रहे, ये कैसे हो सकता है कि हम बैठे अभी घर में आओ मन बुद्धि लगी रहे मधुबन में? ऐसे हो सकता है क्या है? हो सकता है अल्पकाल के लिए हो सकता है या सदा काल के लिए हो सकता है? अल्पकाल के लिए हो सकता है, सदा काल के लिए नहीं। जैसे किसी का किसी से लगाव लग जाता है, महबूब का महबूबा से लगाव लग गया या महबूबा का महबूब से लग गया, तो आंखें खुली रहती हैं, लोग निकलते चले जाते हैं और देखने में नहीं आता कि कौन निकल गया। ऐसा अनुभव होता है? किया है? सुनाने वाला बात सुना रहा है लेकिन कान नहीं सुनते, यानी इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं करती। तो जब लौकिक जीवन में हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में, तो क्या ज्ञान में रह करके ये अनुभव नहीं हो सकता कि हम रहें घर में? क्या रहें घर में और घर में रहते हुए भी बुद्धि मधुबन में लगी रहे, बात में लगी रहे, मधुसूदन में लगी रहे? तो वह सन्यासी समझते हैं गृहस्थ धर्म में हमें नहीं रहना, ये तो असंभव है। क्या ये नहीं हो सकता कि घर गृहस्थ में रह करके स्त्री के साथ रह करके सो करके हम पवित्र रह सके? वो तो ऐसे समझते हैं, इसलिए छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना यह कर्म नहीं करना है। कौन सा कर्म नहीं करना है? यह कर्म गृहस्थ में रहने का कर्म नहीं करना। इन हठ योग सन्यासियों का भी पार्ट है, उनका जो पार्ट है तो उनको बजा नहीं है, और मेरा भी यह पार्ट है। मेरा क्या पार्ट है? जो मेरा पार्ट है तो मेरी मंदिरों में यादगार है, और वो जो पार्ट बजाते हैं तो वो उनके मंदिर नहीं बनते। मंदिर मान घर। उनका भी एक ये निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है, प्रवृत्ति में नहीं, प्रवृत्ति मार्ग वालों का धर्म नहीं, निवृत्ति मार्ग वालों का। उनकी भी अपनी धारणा है कि प्रवृत्ति में रहने से डरते हैं, कहीं हमको आंख आंख न लग जाए, ऐसा ना हो कि हम जल मरे। और कोई धर्म में घर घाट छोड़ जंगल में नहीं जाते, सन्यासियों में ऐसा है कि वो घर घाट छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अगर कोई ने छोड़ा भी है दूसरे धर्म वाले ने, तो भी सन्यासियों को देख करके छोड़ा है। हाँ, बाबा कोई घर से वैराग नहीं दिलाते, नहीं, न घर से वैराग दिलाते, न घरवाली से वैराग दिलाते। बाप कहते हैं भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो। पुरानी दुनिया को घूमते जाओ, कैसे पवित्र बनेंगे? जब पुरानी दुनिया को भूलते जाए, पुरानी दुनिया को भूलेंगे तो बुद्धि में रहेगा कि जो नई दुनिया आने वाली है अब हमें उसमें जाना है। जहाँ जाना होता है वैसा रूप धारण करना होता है। नई दुनिया में जाना है तो क्या वहाँ भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा होगी? नहीं, ये कहाँ पैदा होती है? पैदाइश भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश तो इस दुनिया में पैदा होती है। तो जब हमें जाना है नई दुनिया में, हमारा अहम ऑब्जेक्ट है नई दुनिया में जाने का, तो हम पुरानी दुनिया की परंपराओं को अगर बुद्धि में धारण करे रहें, उन्हीं पर चलते रहें, तो नई दुनिया में नहीं जा सकेंगे। तो पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाए रहा हूं। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूं। क्या वो अगर मानिया मठ पंथ बनाते भी हैं तो किसके लिए बनाते हैं? हाँ, अपने लिए बनाते हैं, अपने मान मर्तव्य के लिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने तुम्हारे लिए बनाया, तुम आकर के घरगस्त बाल बच्चों को लेकर के यहाँ बैठ जाओ। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, ये जो मकान बन रहे हैं मधुबन में, चाहे मिनी मधुबन में चाहे ब्रांड मधुबन में, ये किसके लिए? विनाश होगा तो तुम बच्चों के ही काम आवेंगे। तो कितना फर्क है उन सन्यासियों में और तुम्हारे में। उन्होंने भी महलमारियां अटारियां बनाई हुई हैं, मठ पंथ बनाए हुए हैं, लेकिन गृहस्थियों को अपने पास टिकने टिकने नहीं देंगे। टिकने देंगे? अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं, टिकने देंगे? नहीं। तो शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूं, उनका हद का संज्ञान जिससे अंतकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर के माथा टेकते हैं किनको है? सन्यासियों को माथा कौन टेकेंगे जाकर के? जो अपवित्र होने वाले होंगे, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है, जो अपवित्र होंगे वही उनको जाकर के माथा टेकेंगे, और जो पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाले होंगे घर गृहस्थ में रहते हुए, वो ऐसे श्रेष्ठ सत्य पुरुषार्थी उनको माथा नहीं टेके, उनकी बुद्धि में झट बैठ जाएगा कि हमारी प्योरिटी ज्यादा श्रेष्ठ है या इनकी प्योरिटी की पावर ज्यादा श्रेष्ठ। देवता धर्म में प्योरिटी ऊंची या संन्यास धर्म की प्योरिटी ऊंची? तो अपवित्र लोग जाकर के माथा टेकते हैं किनको? सन्यासियों को। माथा टेकना माना बुद्धि झुकाना, माना उनकी मत पर चलना। जो पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाले होंगे सच्चे ब्राह्मण, वो उनको माथा नहीं टेकेंगे, उनकी मत पर नहीं चलेंगे। तो देखो पवित्रता का कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते रहते हैं, कौन है? सन्यासी कौन से? सिर्फ बाहर की दुनिया के ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े फ्लैट बनाते रहते हैं। अभी माने कब? सचिवी सतो प्रधान स्टेज में नहीं बनाते, उस समय तो जंगल में रहते हैं। सतो सामान्य स्टेज में भी नहीं बनाते, उस समय भी जंगल में रहते हैं। कभी कभी आना जाना होता है, रोज दूर कम दूर। बनाते कब से हैं? बड़े बड़े फ्लैट कब से बनाते हैं? द्वापर युग स्टेज में भी नहीं, रजो प्रधान स्टेज में भी नहीं बनाते। जब तम प्रधान बनते हैं तो शहर में घुस पड़ते हैं और बड़े बड़े महल मारियां अटारियां बना। मनुष्य दान करते हैं कि हमारा पुण्य हो जाए, और वो उस दान के पैसे से बनाते हैं अपने लिए फ्लैट। बाप कहते हैं अब इसमें पुण्य तो कुछ नहीं हुआ है, दस दस बीस बीस करोड़ रुपए के मकान बनाए दिए, मठ पंथ बन गए, जिज्ञासु ने पैसा दे दिया फॉलोअर्स ने, कुछ फायदा हुआ? इसमें कोई पुण्य तो हुआ नहीं। पुण्य कहते हैं हम जो सब कुछ ईश्वरार्थ करते हैं वो हुआ पुण्य। तो ईश्वरार्थ किया क्या? बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियों में लगाए दिया पैसा, तो उन जिज्ञासुओं का या उनके फॉलोअर्स का पुण्य हुआ? पुण्य नहीं हुआ। पुण्य कब होगा? जब ईश्वरार्थ लगाए। ईश्वर तो प्रवृत्ति में रहकर के राज्यों को सिखाता है, इसलिए मुरली में बोला ये भूल गए हैं कि बाप ने प्रवृत्ति में रहकर राज्यों को सिखाया, निवृत्ति में रहकर राज्यों को नहीं सिखाया। ब्रह्मा संस्कृति की भी प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो भी उनकी बेटी थी, उसको प्रवृत्ति नहीं। तो बाप कहते हैं मेरे अर्थ है, तुम किस किस कार्य में लगाते रहो, क्या किसी न किसी कार्य में मेरे अर्थ लगाते रहो। दान उनको देना चाहिए जो पाप न करें, किनको देना चाहिए जो पाप न करें, अगर पाप किया जिनको तुमने दान दिया और उस धन से उन्होंने पाप किया तो पाप का बोझ तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाएगा। क्या तुमने तो पैसा दिया, उन्होंने महलमाड़ियां अटारियां बनाई और फिर उन महलमाड़ियों अटारियों में सत्संग के नाम पर उन्होंने लतसंग शुरू कर दिया, मारी लाख भागो यहां से, तुम नहीं आ सकते, तुमसे कोई ज्ञान का लेन देन नहीं करना। तो लतसंग हुआ, सत्संग हुआ, लतसंग, तो वो लतसंग करने का जो पाप है वो किसके ऊपर पड़ेगा, जिन्होंने ऐसा लतसंग करने के लिए दान दिया उनके ऊपर भी पाप का बोझ चढ़ जा। तो अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए। अगर तुम पैसे न देते तो वो लतसंग न करते, तुमने पैसे दिए तो उन्होंने लतसंग करना शुरू कर दिया। पतितों को देते देते तुम कंगाल बन चुके हो, ऐसे लतसंग करने वाले पतितों को देते देते तुम क्या बन गए, तुम खुद कंगाल बन गए, तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी कुछ भी रही नहीं, पैसे ही सब बर्बाद हो गए। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है देने वालों को, क्या अल्पकाल का सुख मिल जाता है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ। अल्पकाल का सुख मान मर्तबा लेने का है, तो ये खेल अभी तुम पावन बन रहे हो, पैसे भी तुम्हारे पास यहां ढेर होंगे, पावन बन रहे हो, पैसे भी तुम्हारे पास ढेर होंगे, वहां तो कोई पतित होते ही नहीं, कहां फिर क्यों जो पतितों को देना पड़े, वहां तो सब पावन होते हैं, देने की बात कहां है, यहां ये बड़ी समझने की बात है कि दान भी सुपात्र को देना चाहिए, सुपात्र को नहीं देना चाहिए। तुम हो ईश्वरीय औलाद, औलाद किसकी हो, ईश्वर की, तो ईश्वरीय औलाद का लेन देन किससे होना चाहिए, ईश्वर के साथ, क्योंकि और तो सब इस दुनिया में पतित हैं, बुलाए ईश्वर से, तो ईश्वरीय औलाद का लेन देन पतितों के साथ न हो, किसके साथ हो, ईश्वर के साथ। तुम्हारे में बड़ी रायल्टी होनी चाहिए, जो राज्य लोग होते हैं बड़े रायल होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद की चलन बड़ी रायल होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठहर न पावे। उन्होंने बाप टीचर गुरु अलग है। किनों में जो गुरु लोग पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिनको पढ़ाते हैं, वहां उनकी दुनिया में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु तीनों का पाठ एक ही बजाने वाला है। ब्रह्म के थ्रू भी जो पार्ट बजाया, बस सिर्फ माँ का पार्ट, बाप का भी नहीं तो टीचर का भी नहीं तो सदगति करने वाला गुरु का भी नहीं। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो ट्रबल के निंदक बनेंगे या एक के निंदक बनेंगे? बाप के भी निंदक बने, टीचर की भी निंदा कराई और सदगुरु की भी निंदा कराई। तो पाप कितना गुना चढ़ेगा फिर? सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों न बाप से वर्षा ले ले? क्या कहा? शरीर छोड़ना है? हाँ, बता दिया कि शरीर छोड़ना माना देहभान छोड़ना। मरना कौन चाहता है? मरना तो दुनिया में कोई नहीं चाहता। यहाँ तो बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। तो मरना तो सबको है, चाहे शरीर से मरे और चाहे जीते जी मरे देहभान से। तो जब सबको मरना ही है तो हम क्यों ना बाप से वर्षा ले लें? बाप कहते हैं कि ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लग जाओ। बाप को वर्षा लेना है तो क्या करना पड़े? इस अलौकिक ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। मैं क्या करूंगा? मैं कोई फ्लैट महल माणिया अपने लिए नहीं बना के रखूंगा, या ऐसा समझते हो कि अपने लिए बनाऊंगा? मैं क्या करूंगा? मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं। मैं वहां भी महलों में नहीं रहता। कहां? हैं? इधर तीन भवन बनेंगे, पांडव भवन, एक स्वर्ग का दिल्ली में, दूसरी तपस्या भूमि माउंट आबू जिसकी सबसे बड़ी यादगार है। वहाँ मिनी यादगार नहीं है, ब्रॉड यादगार, छोटा मोटा मंदिर नहीं है। और तीसरा विश्व का कंट्रोलिंग स्थान, कंट्रोलिंग केंद्र, ये तो मुरली में कहीं कहा है, कहा तो नहीं है। हाँ, कहा तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन मुरली में ये आया है कि अहमदाबाद है सर्व सेवा केंद्रों का बीज रूप। तो सर्व सेवा केंद्रों का बीज रूप तो माउंट आबू होना चाहिए। अहमदाबाद को क्यों बता दिए? अच्छा चलो माउंट आबू नहीं, किंतु बात तो 50-51 में आए तो सेवा तो नहीं शुरू हुई। अच्छा चलो दिल्ली का कमला नगर सेंटर पहला सेंटर खुला, वहां से सेवा की शुरुआत हुई, तो उसे कमला नगर सेंटर को कहना चाहिए सर्व सेवा केंद्रों का बीज रूप। लेकिन नहीं, कहा किसको? अहमदाबाद को। क्यों? बाद में नहीं, जरूर। सारी दुनिया का जो बीज है, सारे विश्व की सेवा का जो बाप है, वो अहमदाबाद से प्रत्यक्ष होता है, निकलता है और उसकी यादगार में 108 स्वामी नारायण के मंदिर अब भी बने हुए। तो बोला अब मुरली में कि स्वामी नारायण के 108 मंदिर हैं अहमदाबाद में, ढेर पैसे आते होंगे तो जरूर सर्व सेवा केंद्रों से यहाँ ही आवेंगे ना। कहाँ? अहमदाबाद सेवा केंद्र तो विश्व में होंगे, सारे विश्व में सेवा हो रही होगी ईश्वरी, लेकिन उनका कनेक्शन कहाँ होगा? अहमदाबाद माउंट आबू से नहीं, माउंट आबू में ये धंधा दौरी नहीं चलेगा। कहाँ से चलेगा? अहमदाबाद। तो मैं तो वहां स्वर्ग में भी महलों में नहीं रहता, मैं कहां रहता हूं? कांटों के जंगल में दिखाते हैं, स्वर्ग के महलों में उसको नहीं दिखाते। यहां भी मैं महलों में नहीं रहता हूं। यहां ने कहा ये महल नहीं हो गया? चलो अभी पोताई लिपाई नहीं हुई है, हो जाएगी। वो तो है राजबहादुर कहता घर है, ये महल नहीं कहेंगे, छोटा मोटा महल नहीं हो गया? हाँ नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा की अपनी कुटिया थी अप्रैल की, उसमें रहते थे, फिर बड़ा आलमी बन गया उनके सामने, तो महल तो बना ना, एरोप्लेन बना, बड़ा हाल बना और कमरे बने, लेकिन वो रहे कहाँ? रहे तो फिर भी कुटिया में ना, झोपड़ी में। हाँ तो वहां भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ, भी क्यों लगा दिया? यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ, ये महल मारी अटारियां तो तुम्हारे लिए हैं, तुम इसमें सो पड़ो बैठो खेलो कूदो खाओ पियो, मेरे लिए तो वही कुटिया है। दिलवाड़ा मंदिर में कोने वाली कुटिया है काला देव की, तो मैं न वहां रहता हूँ महलों में, न यहाँ रहता हूँ। जाते भी हैं बम बम महादेव भर दे झोली, तो ये किसका गायन है? शिव बाबा का गायन हुआ ना, कि शिव बाबा खुद नहीं रहता, गायन क्या परम नाम का होता है, है? गायन इस सच्ची पर जो एक्ट की होगी उसका होगा, ये परम धाम में बैठे रहने का होगा। तो गाते भी हैं बम बम महादेव। बम बम शब्द क्यों लगाया? क्या बम भगते रहते हैं क्या? बम बम शब्द जुड़ा हुआ है, ये एटमिक बम्बों से इसका नाम क्यों जुड़ा हुआ है महादेव का? तो स्थूल बम छुड़ाने से कनेक्शन नहीं है, ये तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो यादव संप्रदाय है उनके लिए, चाहे वो यादव संप्रदाय का हेड कृष्ण हो, कृष्ण भी कहां राज करते थे यादवों के ऊपर, और ब्राह्मणों की दुनिया ने अभी शंकर को किसका हेड बताया है? यादवों का हेड, रूहानी मिलिट्री का मार्शल भी बताया, तो यादवों का हेड भी बताया, तो वो यादव कौन है? हाँ, विदेशी आत्माएं जो बाप को पहचानती भी हैं और पहचान करके फिर सतगुरु की निंदक भी बन जाती, पूरा पार्ट भी पहचान लेते हैं कि हाँ ये पार्ट है, फिर भी निंदा करते हैं।